मुंशी जी वो देखिए डैडी का प्लेन, डैडी आ गए, डैडी आ गए।
कम मिस्टर रिचर्ड।
हेलो डैडी।
हेलो विकी। मिस्टर सक्सेना गाड़ी में बिठाइए इन्हें
प्लीज। कम
मुंशी जी और तो सब ठीक है ना?
जी बिल्कुल ठीक है, मगर राय साहब मैं विक्की के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता
हूँ। मुंशी जी कल बात कर लीजिएगा, दरअसल बात यह है कि मिस्टर रिचर्ड को अपने नए स्टील प्लांट पर ले जा रहा हूँ।
देखा मुंशी जी आज भी डैडी ने हमें प्यार नहीं किया।
बेटे तुम्हारे डैडी को काम से फुर्सत ही कहा। मैं जो हूँ तुम्हें ब्याज करने वाला।
ये हम क्या सुन रहे हैं मुंशी जी, विकी ने शराब पीना शुरू कर दी है। उसे तो हमने आपके हवाले किया था और आपने उसे शराबी बना दिया।
राय साहब इसके जिम्मेदार आप हैं।
हम? ये क्या भक्ति हैं आप?
जी राय साहब, विक्की को शराबी बनाने वाले आप हैं। आप आपको दौलत कमाने से फुर्सत नहीं थी और नन्ना बेचारा विक्की अपने बाप के प्यार को तरसता रहा। आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि अपनी मरती हुई बीवी को आकर देखते भी।
वो रात मुझे आज भी याद है जब आप डॉक्टर पे डॉक्टर भेज रहे थे।
राय साहब सच बहुत कड़वा होता है। जिस उम्र में बच्चों को दूध हजम नहीं होता उस उम्र में आपने विक्की को बरांडी पिलवानी शुरू कर दी। वो छींकता था तो आप कहते थे दो चम्मच ब्रांडी पिला दो, वो रोता था तो आप कहते थे दो चम्मच ब्रांडी पिला दो, सिर्फ इसलिए कि आपके कारोबार की मीटिंगों में खलल ना पड़े। राय साहब आज वही दो चम्मच ब्रांडी के शराब की बोतल बन गए। ये तो मेरा प्यार है राय साहब जिसकी वजह से आपकी औलाद सही सलामत है, वरना वो मासूम कब का इस दुनिया।
अपनी जबान और आवाज पर काबू रखिए मुंशी फूलचंद, हमें ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। और ये भी ना समझिएगा कि विकी आपके बगैर नहीं रह सकता, हम उसके लिए 50 रुपए नौकर रख सकते हैं।
क्यों नहीं राय साहब, 50 रुपए क्या आप सैकड़ों नौकर रख सकते हैं? अब आपको मेरी जरूरत ही क्या है? सोचा था कि मरने से पहले इस घर से नहीं जाऊंगा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने गलत सोचा था। वो अमरनाथ कपूर जिसका कि मैं दुनिया में अकेला ही दोस्त था आज दौलत की दुनिया में भटक गया है। आपकी दौलत की हवस ने मुझे नौकर बना दिया, दोस्त से नौकर बना दिया। ये तो विक्की का प्यार था जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ रुका हुआ था। अब मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
नहीं मुंशी जी नहीं, अब हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मुंशी जी हम आपके बिना नहीं रह सकते।
बेटे इस मुंशी को भूल जा, तेरा खून का रिश्ता राय साहब से है, यही तेरे सब कुछ है। गरीब मुंशी तो इस घर का नौकर है, नौकर मैं जाऊंगा।
डैडी रोकिए ना मुंशी जी को, डैडी रोकिए ना प्लीज। डैडी मुंशी जी रुक जाइए, आपको हमारी कसम।
विक्की बेटे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रो मत, मैं नहीं जाऊंगा।
आदाब।
शाबाश अनवर शाबाश। एक उस्ताद के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जिस स्टूडेंट पर वो मेहनत करे वो बड़ा होकर बाइज्जत इंसान बने। आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है मेरी आशाओं मेरी तमन्नाओं ने वर्दी पहन रखी है।
सर खुदा रसूल के बाद अगर मैं किसी और की इज्जत करता हूँ तो वो आपकी। मगर एक सवाल जो आप हमेशा से टालते चले आ रहे हैं, आज उसका जवाब दीजिए कि वो कौन नेक इंसान है जिसने एक कमजोर पौधे को अपनी मेहरबानियों से सींचकर इस मंजिल तक पहुंचा दिया।
देखो बेटा मेरी जुबान किसी वचन की जंजीर से बंधी हुई है, जो वादा जो वचन मैंने जिंदगी भर नहीं तोड़ा उसे तोड़कर क्यों गुनहगार बनाते हो? और देखो बेटे दुनिया बहुत छोटी है, हो सकता है किसी रोज किसी चौराहे पर किसी मोड़ पर उस नेक इंसान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए।
रुक
शराबी रे। बाप नोटे छापता रहता है और बेटा सौटी नापता रहता है, पर लौंडा दिल का हीरा है हीरा। अरे गाड़ी पीछे ला रहा है, अरे मैं मारेगा।
मैंने नहीं कहा।
शराबी की आवाज किसने लगाई?
नॉट मी सर, नो।
हमारे मुंह में तो पानी, हम तो बोल ही नहीं सकते।
मैंने क्या बोला?
विक्की बाबू आप पानी पी सकती है मगर आप शराब नहीं पी सकते।
अरे भाई शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे?
अरे ये तो शेर हो गया।
शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे?
यहाँ क्या कर रहे तुम लोग?
बस का इंतजार कर रहे हम। अगर बस नहीं आई ना तो पास्कल का अड्डा बंद हो जाएगा।
अरे कहाँ आजकल पास्कल रास्कल के चक्कर में अपनी आतड़ियां खराब करते हो। दिन भर धूप की ताप से जलते हो, रात को पास्कल की शराब से जलते हो। लो एक और शेर हो गया भाई। अरे तुम लोग हमसे मिलते रहा करो, क्या मुंह से धड़ाधड़ शेर टपक रहा है। ये मुंशी जी भी आज न जाने कहां चले गए, वरना हम भी उन्हें बताते कि वजन में शेर कैसे कहा जाता है। आओ, आओ, तुम लोगों को आज अंग्रेजी पिलाता हूं। ये माना कि अंग्रेज दुनिया को बेवकूफ बनाता है मगर यारों खता माफ।
हे जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार
जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है।
वाह 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 क्या बात है।
अमर ठहरो यार, जरा शेर तो पूरा हो जाने दो। तुम तो गाड़ी लेकर के ऊपर ही चढ़े आ रहे हो। हाँ तो शेर ही भूल गए, क्या कह रहे थे हम?
जिगर का दर्द।
जिगर देखो, हाँ कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है कि जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता
है। बाबा के बच्चे, ए विक्की के चमचो, तुम इसके घटिया और बेहुदा शेरों पर दांत दे देकर उसे गुमराह कर रहे हो।
हाँ हमारा शेर और घटिया।
घटिया? अरे इतना घटिया कि शेर ने शायरों की खटिया घड़ी कर दी। ख्याल घटिया, कलाम घटिया, ना रदीफ ना बदन, चले हैं शायर बनने, बरकरदार ये शेर और शायरी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं।
क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी। देखिए हमारी जिंदगी का तंबू तीन बंबुओं पे खड़ा हुआ है, शायरी, शराब और आप। एक भी बंबू हटाएंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा।
तो फिर काफिये से बात करो, शेर में वजन पैदा करो।
बस यही तो बात है मुंशी जी, ये कमबख्त वजन कहां से लाएं? देखिए रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है। ये वजन मिलता कहाँ है?
दिल की दुकान पर।
हाँ?
दिल की दुकान पर।
वो कहाँ है?
इश्क के बाजार में, मोहब्बत के शहर में और प्रेम की दुनिया में। अगर तुम अपनी शायरी में वजन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में किसी सुंदरी का होना बहुत जरूरी।
लानत लानत है मुंशी जी, कहाँ औरत और कहाँ हम, हमें हमें क्या लेना देना औरत जात से। ओ, वैसे भी मुंशी जी, हमारे बचपन से लेकर जवानी तक और आपकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, हमने तो आपकी जिंदगी में कभी किसी औरत का साया नहीं देखा। यार, आपकी शायरी में इतना वजन कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सुलाने के बाद आप
जी 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 जी
जी
जी आपकी तारीफ।
सरकार, मुझे नटवर शाह कहते हैं।
हाँ, कहिए।
हुजूर, हम इस शहर में एक मशहूर कलाकार मीना जी का एक शो कर रहे हैं। अगर आप उस शो में चीफ गेस्ट बनकर आ जाएं तो हमारे शो को चार चांद लग जाएंगे।
भाई, मुझे क्यों पिटवाने के चक्कर में, आप चांद तो एक ही होता है, ये बाकी के तीन आप कहां से लाएंगे? पर आप ये मीना जी क्या लगते हैं?
सरकार, उनका सारा धंधा मैं ही दिखता हूँ।
धंधा
जी, मेरा मतलब उनके सब शो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑर्गेनाइजर। और ये रही मीना जी की कुछ तस्वीरें एल्बम में, एक नजर मार लीजिए।
ठीक है मुंशी जी, अब आप कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं।
मैंने कब कहा है?
जी, अगर नहीं कहा तो फिर कह दीजिए प्लीज।
भाई, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, इसकी अपनी मर्जी है।
ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी।
जी फरमाइए।
वो हम मुंशी जी से कह देंगे।
थैंक यू सर।
शुक्रिया। सुनिए
जी।
जाइए।
थैंक यू सर।
मजाक है विक्की साहब?
मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे?
वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है?
हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए।
बड़ी मेहरबानी की आपने। शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह, उसके दिल की आँख के निशान मिटा देती है।
वाह, ये तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने। इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे।
जो बात की गहराई को नहीं समझता वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
तवायफ? कोठा मतलब हम आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया। देवी जी, कोठा क्या होता है, तवायफ किसे कहते हैं, ये ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं। अभी आपने हमसे कहा कि जो इंसान कलाकार की कला को ना समझे वो इंसान नहीं होता, तो इस पर हम कहना चाहेंगे कि जो कलाकार इंसान को ना समझे वो भी इंसान नहीं होता। पर हमने आपका दिल दुखाया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। चलिए मुंशी जी,
चलो।
वो क्या कहते हैं आप ऐसे मौके पर,
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
हाँ,
ठहरिए,
कहिए,
बैठिए।
भाई कमाल है मुंशी जी, कभी जाने को कहती हैं, कभी आने को कहती हैं। जी हाँ।
क्या सुनेंगे आप?
अब भी कुछ सुनाना बाकी है क्या? कर, जब आप सुनाना चाहती हैं मीना जी, तो हम तो हमेशा ख्वाबों की दुनिया में जिए हैं, अगर आप कभी कोई ख्वाब हो तो सुना दीजिए, फिर इन हाथों का कमाल देखिए, इनसे आपको हजार तालियों की गूंज न सुनाई दे तो हमारा नाम भी विकी नहीं।
अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, तुझे मैं तुझे सांसों में बसा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी।
सिर्फ मैंने लाखों आदमियों के सामने शो किए, लेकिन ऐसी दाद ना किसी ने दी और ना ही शायद कोई दे सकेगा। आप हंसे क्यों?
हंसी, आजकल के दौर में हंसी की फसल उगती कहां है मीना जी? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? आंखें मूंद कर बैठे हों तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो? आपने तो यहां आके हमें चौंका दिया।
और आपने इतना कीमती तोहफा देकर मुझे चौंका दिया।
पसंद आया आपको?
जी बहुत सुंदर है, पर मुझसे आपकी यह कीमती अमानत संभाली नहीं जाएगी।
हमारे तोहफे को अमानत का नाम देकर उसे गाली मत दीजिए। तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती।
आपकी नीयत की मैं बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मेरी गरीबी के कंधे ये बोझ नहीं उठा सकेंगे।
आपको अपने कर्जदान के दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये बोझ तो उठाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी आरजू है, अगर पूरी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।
जी।
13 तारीख वैसे तो बड़ा मनहूस दिन होता है, लेकिन उस मनहूस दिन को हम इस दुनिया में उतारे गए। अब उतारे गए थे या फेंके गए थे तो हम नहीं जानते, लेकिन 13 तारीख को हमारा जन्मदिन है, और उस दिन अगर आप हमारे इस नाचीज तोहफे का लिबास पहन कर आ जाएंगी तो वो मेरे जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा होगा।
लेकिन
लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि आप कलाकार हैं और हम कदरदान हैं। बोलिए, आएंगी ना?
जी मैं वादा तो नहीं करती, कोशिश जरूर करूंगी।
कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। इसलिए 13 तारीख को मैं आपकी उस कोशिश का इंतजार करूंगा।
नमस्ते छोटे मालिक।
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 छोटे मालिक? छोटे मालिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा मालिक नाराज हो जाएगा।
विक्की बाबू, बड़े मालिक ने आपको अंदर बुलाया है।
बड़े मालिक ने हमें बुलाया? आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए।
क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
ओ हो, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
सरकार मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ।
नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सके। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना।
ये तो आपका बड़प्पन है।
मेरा बड़प्पन है? मूछे बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछे बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख मैदान सफर चट है।
बात कहनी थी मालिक।
देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक हो करके हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम है?
सरकार अगले महीने में मेरी बेटी की शादी।
वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो।
नथुलाल जी, आपकी 3 बेटियां हैं ना?
नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं, जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25,000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
बड़ी लड़की? वो बाकी की 4 जो हमारी बहनें हैं उनका क्या होगा?
वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा।
हाँ, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा मुंशी जी। ये तो मिसरा हो गया, जरा शेर पूरा कीजिए तो।
दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा।
वाह वाह मुंशी जी, क्या बात है, क्या शेर कहा है आपने, बड़ा वजन है इस शेर में। और लगे हाथ हमें नथुलाल जी का भी वजन कम कर देना चाहिए। सक्सेना साहब जरा सुनिए
जी,
हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
2.5 लाख रुपया?
हाँ सक्सेना साहब, 50,000 के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे।
नहीं सरकार, ऐसी बात मत कहिए, मेरे सारे खानदान की उम्र आपको लग जाए।
अरे उठिए 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 नथुलाल जी, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें। लेकिन नथुलाल जी मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। आए क्यों चलो बट ठीक है हमने।
ये सर कपूर साहब, अब तो हद हो गई, बुलाई ना विक्की साहब को।
अरे भाई बगाड़िया से, अब तो हमें विक्की बाबू के कुछ नाजो अंदाज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि कपूर साहब शराब की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें विक्की बाबू हिस्सेदार भी हैं और सबसे बड़े खरीदार भी हैं। जितनी भी शराब फैक्ट्री में बनेगी उसमें से आधी से ज्यादा विक्की बाबू ही पी जाया करेंगे।
हाँ पी जाऊंगा, आधी से ज्यादा शराब तो मैं ही पी जाऊंगा, क्योंकि मैं शराबी हूं और वो शराब पीता हूं जो आप जैसे इज्जतदार लोगों की फैक्ट्री में बनती है। लेकिन मेरे शराब पीने से आप लोगों को इतराज क्यों? आज इस बोर्ड की मीटिंग में आप लोग क्या करने आए हैं? शराब की नई फैक्ट्री लगवाने आए ना, जहां लाखों शराब की बोतलें बनेंगी, हजारों शराबी और पैदा होंगे, इसका एहसास है आपको? अरे मेरे बाप के चमचो, मैं तो शराब पीता हूं लेकिन तुम लोग क्या पीते हो, इंसान का खून?
विकी
मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पे नजर डाली? वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है।
विकी Will you keep quiet now?
कपूर साहब what is this? ये मीटिंग क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाई गई है?
आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब, बेइज्जती तो उसकी हो सकती है जिसके पास इज्जत हो।
This is so much. अब तो हद हो चुकी कपूर साहब, अब हम और नहीं सुन सकते कपूर साहब। आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे आदमी चुन लीजिएगा जो आपके बेटे की गालियां सुनने के लिए तैयार हो। इसके बाद अगर मीटिंग होगी तो मेरे ऑफिस में होगी। चलिए
निकाल ली दिल की भड़ास, और अगर अब भी कसर बाकी है तो मुझे गालियां देकर अपने दिल की आग बुझा लो। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जरूरत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके, और आज तुम्हारी वजह से ये लोग मीटिंग बर्खास्त करके चले गए।
हाँ, ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया डैडी, मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान है, आपको तो गुलाम चाहिए जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए।
आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी।
हाँ डरी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी तकदीर ये सब असली करंट तो वहीं से आता है, उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो।
मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो के यहां पर।
बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया डैडी, जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी
बात के लिए बुलाया हूं। बुलाया आपने?
तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग ना हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है?
शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी की आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कहकह लगाता रहा हूं, आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकहों की आवाज सुनी है, कभी कई बाकर के उन कहकहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे।
ये कहकहे, आंसू, जज्बात, ये बेकार और नकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें?
हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के एक घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके।
तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।
ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आ गई जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, लाख पछता है, लेकिन फिर वो पुतला इंसान नहीं बन सका। आपकी कहानी भी यही है डैडी, इसीलिए आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी, न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया, क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं आपने मुझे छू दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाऊं। मैं सोने का बन गया तो मेरे नाम पर आपने ये जो करोड़ों का कारोबार शुरू किया हुआ है, इसके कागजात कौन साइन करेगा?
इस बस्ती के कागजात तैयार करवा के हमसे साइन करवा लीजिएगा। मॉर्निंग डैडी।
आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? देखिए, मेरा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद करके रख दिया और साथ में वो कागजात भी जला दिए। क्या दुनिया भर के गरीबों को सहारा देने का ठेका सिर्फ अकेले तुमने दे रखा है?
डैडी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय?
मैं समझा नहीं।
औलाद अगर अच्छी है, अकलमंद है, लायक है, तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? और अगर वो नालायक, नाकारा है, तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत है?
देखिए, अगर तुम दोनों हाथों से इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि
डैडी, समुद्र में से अगर दो चार लोटा पानी कोई निकाल दे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं तो आप मुझे बेदखल क्यों निकाल देते?
विकी, मैं जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं तुम फजूल की बातें करनी शुरू कर देते हो। खैर, कल तुम्हारा जन्मदिन है, भूल नहीं जाना। मुंशी जी, आप भी इसे याद करा दीजिएगा।
हाँ मुंशी जी, आप भी मुझे याद करवा दीजिएगा कि कल हमारा एक खास मेहमान आने वाला है। नथुलाल जी, बत्तियां बुझवाइए।
जो हुक्म सर।
ये सब आपकी वजह से हुआ है मुंशी जी, मेरा गर्क कर दिया आपने हमारा। आपके रदीफ काफिये ने हमारा काफी तंग कर दिया। औरत जब तक जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। यही कहा करते थे ना, अब देख लिया। बात में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया। अच्छे खासे शरीफ इंसान को मरवा दिया आपने।
इससे पहले कभी हमें किसी का इंतजार करते हुए देखा आपने? ये तो ऐसे लग रहा है कि जब से हम पैदा हुए हैं यहाँ बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो हमें मोमबत्तियों से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी।
वो आएगी बेटे, जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि चाहे कयामत आ जाए मगर वो आएगी।
आएगी आएगी, चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं। लेकिन मुंशी जी एक बात कहें, वो आएगी।
Thank you. देखा तुझे तो दिलों में जान आई, फोटो पे तराने जगे अरमा दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई, छा गई फिर वही बेखुदी, छा गई फिर वही बेखुदी, ला ला ला, ला।
आज आपने हमारा सपना पूरा कर दिया, हमारे तोहफे की इज्जत रख ली आपने, इतनी खुशी हमें अपनी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, वही बिंदी, वही टीका, वही लाली, गले में नौलखा, वही। ए, ये क्या है?
विक्की बाबू, ये नकली हार है, आपका दिया हुआ वो हार चोरी हो गया। मैं तो उसे आपके जन्मदिन पर तोहफे की शक्ल में लौटाना चाहती थी।
भाई मीना जी, हमें तो मजाक करना आता ही नहीं है। देखिए, हमने अपनी जिंदगी में जब भी किसी से मजाक किया उसका दिल दुखा है। अब देखिए ना, हमने आपको नकली हार दिया, आपने
नकली हार? तो क्या वो नकली हार था?
हाँ, नकली हार था, और नहीं तो क्या, असली था। अरे भाई, आजकल तो बाजार में असली जहर नहीं मिलता, हार की तो बात छोड़िए। और फिर आपको 9 लाख रुपए का हार दे करके इनकम टैक्स वालों को अपने घर बुलाना है क्या? अजी लानत है, आज के बाद मजाक वजाक सब बंद, बिल्कुल बंद।
आपके इस मजाक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। उसे असली हीरों का हार समझकर ना मैं घर से बाहर निकलती थी, ना मैं रातों को सो सकती थी। ये गरीब लड़के को परेशान किया, उसका दिल दुखाया, क्या ये मजाक था? आपके इस मजाक को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी।
मीना सुनो, सुनो मीना, अरे सुनो मेरी बात, सुनो मीना।